गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण नितहे गौरंगा जय नितहे गौरंगा नितहे गौरंगा जय नितहे गौरंगा नितहे गौरंगा गौर हरि नितहे गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि पतित पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि जय गौर हरि पतित पावन गौर हरि कलयुग अवतारी गौर हरि कलयुग अवतारी गौर हरि कलयुग अवतारी गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर प्रेमानंदे युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी
पाश्चात देश तारिणे
गुरवे गौरचंद्राय
राधिका तदाल्यै
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तदभक्ताय नमो नमः।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च
नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा। पाल्मो गांव में श्रीमान देवनारायण मित्वा के परिवार ने धर्मेश देव और सोचित पुत्रों ने अपने भाई बंधु के साथ मिलकर आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों के साथ हरि कथा का आयोजन किया है। इस परिवार का आभार प्रकट करते हैं और आप जब सब हरि कथा भगवत वाणी भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद की अमृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करने के लिए आए हैं, आप सबका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के कुछ श्लोकों का 37 से लेकर आगे का श्रवण करेंगे। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। योग का मतलब है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना और ध्यान का मतलब है मेडिटेशन। मेडिटेशन किस चीज से की जाती है? मन से। जैसे भोजन कैसे खाया जाता है? बोला हाथ से। चला कैसे जाता है? पांव से। तो मेडिटेशन किस से की जाती है? बोलते मन से। तो मन हमारा ध्यान के लिए मन का उपयोग होता है और मन है बहुत चंचल। मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। मन की गति इतनी तेज है कि आप मॉरिशस में बैठे हैं और अगर आपने कभी इंग्लैंड देखा है तो मन इंग्लैंड चला जाएगा, अगर भारत देखा है तो भारत चला जाएगा। इधर बैठे हुए आपका मन एक मिनट में कहीं भी चला जाएगा। तो मन की गति बहुत तीव्र है, बहुत तेज है। मनुज्वम मार तुल्य वेगम जितेंद्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये हनुमान जी की महिमा है। मनुज्वम मार तुल्य वेगम, हनुमान जी मारुत कहते हैं हवा को, उसके समान उसकी स्पीड है। हनुमान जी की स्पीड किसके समान है? बोला मन के समान और वायुदेव के समान। तो एक मन और एक वायु, उसके समान हनुमान जी की स्पीड है। तो मन की स्पीड इतनी तेज है और मन कभी एक जगह रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। तो हम जाएं भगवान का ध्यान करें करने और मन कहीं भाग जाए तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है। तो पहले अर्जुन ने एक प्रश्न तो ये भगवान से पूछ लिया कि भगवान आप कहते हैं मन को एकाग्र करना पड़ेगा, मन को एक भगवान में लगाना पड़ेगा, हृदय में बैठे हुए परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, ये मन तो हमारा एक जगह रुकता ही नहीं है, तो कैसे कर ले? और अर्जुन ने उदाहरण क्या दिया कि तेज तूफान आता है, कौन उसको रोक सकता है? आपके यहां तो मॉरिशस में फेब्रुवरी में साइक्लोन कभी आता है, कोई रोक सकता है क्या उसको? दरवाजा बंद कर देते हैं बस, अपने घर का यही करेंगे और क्या करेंगे भाई, बंद कर सकते हैं क्या स्पीड को? नहीं। सांस को रोकने का दूसरा एग्जाम्पल यह है कि क्या आप सांस ले रहे हो इसको बंद कर सकते हो क्या? आप सांस अंदर लेके बंद करके दिखाओ, नहीं, एक मिनट के आधा मिनट के बाद निकालना पड़ेगा। तो अर्जुन कहता है कि मन को वश में करना, मन को कंट्रोल करना हवा को रोकने से भी ज्यादा मुश्किल है। भगवान ने कहा क्यों? बोला मन चंचल है, एक जगह रुकता नहीं है, कहीं भी कभी भाग जाता है। बोला दूसरा क्या मन का दोष है? चंचलामी मन कृष्ण परमाथी। परमाथी का मतलब है जिसे मंथन कहते हैं, मिक्सी आप घुमाते हैं ना कोई चीज, या पंखा चलता है ना तो पंखा के पर दिखते हैं नहीं दिखते हैं, पता नहीं कहां घूम रहा है। परमाथी का मतलब ऐसा इधर का उधर चला जाता है, पता नहीं लगता है कहां चला गया। तो बोला रोक लो। बोला बलवत, बड़ा शक्तिशाली मन, बहुत बड़ा बलवान है, दृढ़म हठी है, अगर कह लिया ये करना है तो रोक नहीं सकते। तो चार मन के नक वश में करने के कारण अर्जुन ने बता दिए। चंचलम ही मन कृष्ण परमाथी बलवद्रणम तस्याम निग्रम न मन्ने वायुरिमित्सु दुष्करम। ये तो तूफान को रोकने के बराबर है साइक्लोन के। भगवान ने कहा असंक्षम महाभाव, अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, बाकी मुश्किल है, बाकी मुश्किल है, राइट, यू आर राइट, ऐसे मुश्किल है। अर्जुन ने कहा तो ठीक है। भगवान का नहीं, फिर एक रास्ता है। असंक्षम महाबाहो मनोदुर्निग्रम, परंतु अगर आप चाहो तो अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न सग्रियते। दो काम कर लो, एक अभ्यास करो और एक वैराग। बोला अभ्यास क्या है? अभ्यास है रोज भगवान का नाम जपना, यह है अभ्यास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है। एक हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसड़ी आवत जावत सिला पड़े निशान। ये क्या है? पहले पानी आदमी कुएं से निकालते थे ना, वेल से, तो जो रस्सी होती थी वो एक पत्थर के ऊपर चलती थी, तो रस्सी आते जाते तो जो रोप होती है वो तो सॉफ्ट होती है, पत्थर तो बहुत हार्ड होता है, लेकिन पत्थर के ऊपर रोप चल चल के पत्थर के ऊपर निशान हो जाता था। तो कहते अभ्यास अगर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे रस्सी पत्थर के ऊपर निशान कर सकती है, ऐसे आपका दिल पत्थर जैसा भले क्यों ना हो, उसके ऊपर भी हरे कृष्ण जपते जपते कृष्ण का निशान पड़ जाएगा, उसके ऊपर इंप्रेशन आ जाएगा। तो अभ्यास का अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र जपना। बोला वैराग का अर्थ क्या है? बोला चार नियम का पालन करना। वैराग का मतलब जो चीज हम चाहते हैं करनी चाहिए लेकिन छोड़नी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके कारण हमारे को बड़ी तकलीफ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे लाल बत्ती लगी हुई है, रेड लाइट है, आपके मॉरिशस में सब लोग रेड लाइट के ऊपर खड़े होते हैं, उसको तोड़ के नहीं जाते। तो ये जो चार नेम है, ये रेड लाइट्स हैं मानव के लिए, कि मांसाहार नहीं करना है, ये रेड लाइट है। करोगे तो क्या होगा? बोला जिसका खा रहे हो उसकी जूनी में जाने पड़ेगा। बकरा खाएगा, खाओगे तो काबरी बनना पड़ेगा, काबरा बाबा। और मछली खाएगा तो समुद्र के अंदर क्या बोलते हैं मछली को? वासु। अरे कृष्णा, तो इसका कहने का एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे लाल बत्ती थोड़ा तो दूसरी गाड़ी आएगी तो आपका कचुंबर बना देगी, सलाद बना देगी। हाँ ठीक है। तो ये रेड लाइट्स हैं। तो अभ्यास का अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, वैरा का अर्थ है चार नियम पालन करना। ये इसका अर्थ है, आप आज याद कर लो, ये प्रैक्टिकल इसका अर्थ यही। अब अर्जुन ने कहा आप भगवान कह रहे हैं मैं अभ्यास तो करना शुरू करता हूं, आई एम स्टार्टिंग माय प्रैक्टिस, लेकिन मन कभी यहां भाग गया और मैं अभ्यास पूरा नहीं किया और बीच में रह गया और मर गया, तो इसको हिंदी में कहते हैं न राम मिला न दाम मिला। पैसा कमाना था, राम तो मिला नहीं, आधे में रह गया और दाम वो भी नहीं मिला, न पैसा मिला न भगवान मिला, बीच में लटक गया क्या? 10 साल हरे कृष्णा जपा, फिर देखा अरे भाई काम नहीं चल रहा है, फिर वापस जाते हैं, क्या करोगे? बोला समुद्र के अंदर जाके मिट्टी निकालते हैं, पानी के अंदर से वापस मिट्टी निकालना शुरू कर दिया। ये तो बहुत मुश्किल काम है। पुराने जमाने में लोग कोयले की खान मतलब माइंस ऑफ द कोल, काउल की माइन में अंदर जाना तो काला ही होके बाहर आना है ना, फिर भी लोग जाते हैं उधर। तो अर्जुन कहता है ऐसे बेचारे ने प्रयास तो किया था लेकिन पूरा नहीं किया और अचानक मर गया, तो ये अर्जुन का प्रश्न है। ऐसे भगवान की कथा शुरू करे, कीर्तन शुरू करे, नाम जपना शुरू करे और पूरा ना हो तो यहां से आगे आज चलना है हमको। अर्जुन वाच बोलो, अयत्य श्रद्धेयो पेतो। आइए आगे चला गया क्या? एक मिनट में यही है ना? हाँ ठीक है। अयति श्रद्धेयोपेतो, अयति का मतलब क्या होता है पता है? अ मतलब नहीं, यति मतलब यतनशील, वन हु इज नॉट केयरफुल। आदमी क्यों सही रास्ते से भटक जाता है? क्योंकि ही इज नॉट केयरफुल। जीवन में अगर हम सावधान नहीं है, वी आर नॉट केयरफुल, तो रास्ता भटक जाएंगे। अयति, वैसे यति शब्द का अर्थ होता है सन्यासी, उसको कहते हैं यति, मतलब यतनशील। तो अयति का मतलब जिसने अपने जीवन में केयरफुल नहीं रहा, असावधान हो गया। श्रद्धया उपित, तो श्रद्धा तो बड़ी अच्छी थी, श्रद्धा के साथ काम किया शुरू, आया मंदिर, प्रसाद भी खाया, हरे कृष्णा जपा, कुछ दिन लाल कपड़े पहन के ब्रह्मचारी बाबा भी बना, लेकिन रहे रुक नहीं पाया, यति नहीं बन पाया और फिर भाग के वापस संसार में चला गया। योग चलित मानस, बोलो योग चलित मानस। योग चलित का मतलब योग से विचलित हो गया, चलित का मतलब गिर गया, मानस क्योंकि मन उसके बस में नहीं था बेचारे के, बड़ा प्रयास किया, मंदिर में गया, कोशिश भी की, लेकिन क्या करे, मन उसका खींच के उसको वापस दुनिया में लेके आ गया। अब अर्जुन आगे कहते अप्राप्य योग सिद्धिम, सिद्धिम नहीं है और थोड़ा लंबा शब्द है, अप्राप्य योग संसिद्धिम। अप्राप्य का मतलब प्राप्त नहीं हुई, किसकी? योग संसिद्धि, संसिद्धि का मतलब सम्यक सिद्धि, सम्यक संस्कृत में मतलब है कंप्लीट, फुल। अगर योग में पूरा सिद्धि नहीं हुआ, परफेक्शन नहीं मिली, इफ इज नॉट परफेक्टेड इन योगा, पूर्ण योग नहीं हुआ। किम गतिम कृष्ण गच्छति, बोलो किम गतिम कृष्ण गच्छति, हे भगवान श्री कृष्ण उसकी क्या गति होगी, वो कहां जाएगा? घर से निकला था भगवान का भजन करने के लिए, रास्ते में रास्ता भटक गया, रास्ते में भटक गया, मन उसको कहीं और लेके चला गया, उसका क्या होगा? ये ऐसा प्रश्न है, इसको आप समझ लीजिए, अजामिल है। घर से गया था पूजा के लिए, फूल लेने के लिए, कहा कि मैं फूल लेके आऊंगा, लकड़ी लेके आऊंगा, यज्ञ करूंगा और भगवान नारायण के सालंगराम की पूजा करूंगा। गया था इस काम के लिए, बड़ा ब्राह्मण था, वेद पढ़ने वाला था, लेकिन जंगल में गया तो किसी लड़की और लड़के को आपस में आलिंगन करते देखा तो बेचारे का मन चलित हो गया। मन चलित हो गया का मतलब उधर मन चला गया, बड़ा कोशिश किया लेकिन रोक नहीं पाया, रोक नहीं पाया तो पतन हो गया, वैश्या के साथ विवाह भी हो गया। तो इसकी गति क्या होगी? अभी इसका उदाहरण ये दे दो, उसकी गति क्या होगी? तो भगवान कहे गति क्या होगी, अंत समय नारायण का नाम लिया और मैंने उसकी रक्षा कर ली। इसका अर्थ ऐसा निकालोगे तो बहुत आसान है, उसको भी मैं छोड़ता नहीं हूं, उसका बुरा कभी नहीं होगा। अब अर्जुन के श्लोक का अर्थ समझ में आया? अच्छी घर से तैयारी की थी कि अब मानव जन्म बहुत दुर्लभ मिलता है, ये हरे कृष्ण वाले कह रहे हैं, हरे कृष्ण जपना चाहिए, ये तो असली भगवान के सनातन धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, वेद के धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, ये तो आर्य शिक्षा दे रहे हैं, आर्यों को लोगों को ऐसे करना चाहिए था, ये तो आर्य शिक्षा है, ये वेद की शिक्षा है, तो फिर इसको अपना लेना चाहिए, बहुत अच्छा है, तो हमको भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन भजन करने गए लेकिन रास्ते में सावधान नहीं थे और भटक गए, तो अब क्या होगा? अर्जुन का ये प्रश्न है। अब आगे अर्जुन पूछता है, कच्छिन नौभ्या विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति। छिन्नाभ्रम कहते हैं बादल को, ये छोटा सा कभी एक क्लाउड आसमान में आकाश में आए और कहीं से हवा आए ऐसे उसको ले जाए, तो न तो पानी बरसा न किसी को छाया दिया, तो ऐसे तो नहीं है कि उसके जो योग के रास्ते में जाते जाते कोई ऐसे मन के अंदर तूफान आया और वो कहीं चला गया तो बेचारे का कोई फायदा नहीं हुआ। छिन्ना भ्रम का मतलब है, अभ्रम का अर्थ है क्लाउड, छिन्न का मतलब छिन्न भिन्न हो गया, डिस्पर्स। कछिन्नोभ्योभ्य मतलब इन बोथ कंडीशन, विभ्रष्ट विभ्रष्ट भ्रष्ट हो गया, अप्रतिष्ठो महाबाहो, ये महाबाहो कृष्ण अप्रतिष्ठ एक जगह स्टेबल नहीं हो सका। बादल कैसे स्टेबल होगा, हवा आई तो लेके चला जाएगा ना, बादल तो हवा से चला जाएगा, वायु आई तो कहीं भी छिन्न भिन्न हो जाएगा और सबसे अलग हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो अप्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ का मतलब है एस्टेब्लिश, इतने एस्टेब्लिश नहीं हो सका। विमूढ़ हो ब्राह्मण पति, अब वो भक्त को कहते हैं विमूढ़ हो, बेचारा मूर्ख हो गया, माया ने उसको छल दिया और उसे ब्रह्मपति, ब्रह्मपति का मतलब है वेद के रास्ते के ऊपर चलता रहा, ब्रह्म कहते हैं वेद को, वेद के रास्ते के ऊपर चल रहा था, ब्रह्म कहते हैं भगवान को, वेद में भगवान के लिए कहा है, तो भगवान के रास्ते में चलने वाला, वेद के रास्ते में चलने वाला, अध्यात्मिकता के रास्ते में चलने वाला, ट्रांसेंडेंटल पाथ के ऊपर चलने वाला बेचारा भ्रष्ट हो गया बादल की तरह हवा के कारण, क्या होगा उसका? अब तीसरा अर्जुन के ये क्वेश्चन तीन श्लोकों में, ये थर्ड लाइन है, एतन्मे संक्षम कृष्णा, एतन में संक्षम कृष्ण, हे श्री कृष्ण ये मेरा डाउट है, ये मेरा संशय है, काम शुरू किया काम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा उसका? बेचारा माया ने उसको मूर्ख बना दिया। चेत महरस्य अशेषतः, मैं चाहता हूं अशेष, शेष कहते हैं बाकी बचा, अशेष का मतलब कंप्लीटली, मेरे को पूरी तरह से इस संशय का निवारण करो, अच्छी तरह से मुझे इसका उत्तर दो। भगवान कह सकता है कि जाके शास्त्र पढ़ लो, जाके व्यास जी से पूछ लो, किसी और से पूछ लो, बहुत से महात्मा हैं। तो अर्जुन कहता है त्वद अन्य संशयस्य चेतुम न उपपद्यते। भगवान आपको छोड़ के इस मेरे संशय का, इस मेरे डाउट का और कोई निवारण नहीं कर सकता है। Nobody else I have faith can answer me and dispel my this doubt। ऐसा कोई और मुझे नहीं दिखता है जो इसका उत्तर दे सके। अब अर्जुन ने भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागति है, पूर्ण विश्वास है कि आप ही कर सकते हो, आप महाबाहु हो। अब इसके ऊपर भगवान क्या उत्तर देते हैं ये आप सुन लीजिए। श्री भगवान वाचा, ये आप उच्चारण करते हैं ना, इसका अर्थ नहीं भी आए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये ब्रह्म शब्द है। भगवद गीता का एक एक श्लोक मंत्र है। भगवद गीता माला मंत्रस्य, ये मंत्रों की माला है। ये उच्चारण करने से आपका अंदर पवित्र होने लगेगा। इट प्यूरिफाई ना, अर्थ नहीं भी है। यू डोंट नो नो मीनिंग डजंट मैटर, बस सिर्फ उच्चारण करो। बोले पारथ न एव इह नाम उत्रा। अर्जुन, पार्थ अर्जुन का नाम है, पृथा का पुत्र है, कुंती का नाम घर का था पृथा, और एक महाराज मित्र थे कुंती भोज, उसको गोद में दे दी गई कुंती, तो उसका नाम हो गया कुंती, कुंती कुंती भोज की बेटी। तो असली उसका वासुदेव की बहन के रूप में उसका नाम था पृथा। सबसे ज्यादा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ के नाम से संबोधन किया है, एड्रेस किया है। नंबर वन काउंट करेंगे तो पार्थ आएगा, नंबर टू कौनते आएगा। तो जब अर्जुन को भगवान पार्थ कहते थे ना, तो उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के, जैसे किसी बच्चे के पीठ के ऊपर हाथ रख के, और कहते हैं अरे भाई तू तो मेरा भाई, किसी को बोलते हैं ना अरे भाई सुनू, भाई बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप, अरे भाई सुनो ऐसे कहते हो नहीं, तो भाई भगवान कहते तू तो मेरा भाई है, कुंती का बेटा है ना, पृथा का बेटा है, तो पृथा तो मेरी बुआ है, तू मेरा भाई है ना, ये मेरे भाई। ये भगवान का स्नेह जो है, स्नेह का मतलब जो भगवान का प्रेम है अर्जुन की, अर्जुन के प्रति जो भगवान का प्रेम है, द लव ऑफ कृष्ण फॉर अर्जुन, अरे मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा भक्त है। उसलिए कहते हैं न ई है इस दुनिया, ई जब शब्द आएगा न इस दुनिया में, नाम उत्र न उस दुनिया में मरने के बाद। अर्जुन ऐसे भक्त का जो पूरी भक्ति नहीं कर पाया और बीच में रह गई, तो न तो इस दुनिया में न उस दुनिया में उसका क्या होगा, आप सुनिए, विनाशस तस्य विद्यते, उसका विनाश न इधर होगा न उधर होगा। काम थोड़ा शुरू किया हो, पूरा नहीं किया, तो इधर भी उसका विनाश नाश नहीं होगा और न उधर उसका विनाश होगा। और फिर भगवान एक सिद्धांत बता रहे हैं, तीसरी लाइन पढ़ें, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अरे मेरे प्यारे अर्जुन, तात का मतलब है बाप बेटे को तात कहता है, गुरु शिष्य को तात कहता है, तात का मतलब माय डियर, मेरे प्यारे अर्जुन, कल्याण कृत जो कल्याण का कार्य करता है, ऑस्पिशियस पुण्य कार्य करता है। पुण्य क्या है जीवन में, पुण्य का अर्थ आता है आपको हिंदी में पायस एक्टिविटीज, अंग्रेजी में पायस एक्टिविटीज, क्या बोलेंगे आपके क्रियोल में पुण्य को, पायस को, या पुण्य करता ही नहीं है तो क्या करोगे, कोई क्रियोल कहां से पुण्य करेगा, किसको कह रहे, पुण्य का शब्द ही नहीं है, हा क्या है, प्योर प्योर प्योर, पुण्य किसको कहते हैं। भागवत में लिखा है श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना यही पुण्य है। तो कल्याण का मतलब आपने कभी एक बार भी कथा सुनी हो, एक बार डाकू जो चोर होते हैं ना, डेक्वाइट, उनका अपना गीता है, हम उनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। उनका पहला रूल है कहीं भी सत्संग हो उसमें मत जाना, पहला रूल है उनका। चोरों का पहला रूल है सत्संग में मत जाना, खानदानी उनका परंपरा में आता है। और दूसरा क्या रूल है, अगर कहीं जाना पड़ जाए तो कानों में उंगली डाल देना, सुनना कुछ मत भाई, अचानक जाना पड़ जाए तो सुनना मत। तो ये उनका रूल था। एक बहुत बड़ा भोमिया नाम का चोर था, बहुत बड़ा डाकू था, उसका नाम था पूरी कंट्री में, और उनको ये तो पाठ पूरा याद था। एक बार कहीं से चोरी करके भाग रहे थे, तो भागते हुए कहीं सत्संग हो रहा वहां से गुजरना पड़ गया, तो सबने उंगलियां डाली कान में, और इसको लग गया पांव में कांटा, पांव में कांटा लगा, तो अब कांटो निकाले तो कान में उंगली तो नहीं जाएगी ना। उस वक्त में महाराज ने प्रवचन में कहा कि जब कोई देवी देवता धरती के ऊपर आता है तो उसका पांव धरती के ऊपर नहीं होता है, ऊपर होता है, उसकी छाया नहीं होती है। दो बातें सुन ली, तब तक कांटा निकल गया कान डाल में, उंगली डाल दी, लेकिन दो बातें सत्संग की सुन ली। अब ये गया आगे, तो पुलिस ने चोरों को डाकुओं को पकड़ने के लिए एक आदमी को काली देवी का ड्रेस पहना के देवी बना दी थी, और वो देवी लोगों को आशीर्वाद दे रही थी, नाच रही थी, तो सब लोग खड़े होते थे। और ये डाकू है ना, देवी के बड़े भक्त होते हैं, देवी को देखा सब उसको प्रणाम करने बैठे। इसने वो सत्संग के दो शब्द जो सुने थे, उसने देखा इसके पांव तो धरती पे पड़े हैं, इसके पीछे तो इसका शेडो पड़ा है, जो छाया पड़ी है। उसने बोला ये तो असली नहीं है देवता, ये तो मैं सत्संग में अभी सुन के आया। वो वहां से भाग गया, तब तक पुलिस आई, बाकी सबको पकड़ लिया, ये बच गया। भाई ये क्यों बच गया, कि ये सत्संग के दो शब्द सुन के आया था, वो गया ना अचानक, तो कल्याण हो गया। तो दो शब्द केवल सुने थे कि देवता का छाया नहीं होता है, पांव धरती पे नहीं होता है। उसने बोला ये तो सब हमको पकड़ने के लिए सरकार ने किया है, भाग गया वहां से, बच गया। आगे कथा मुझे याद कराना, मैं आगे कथा भी बताऊंगा। एक रशियन बहुत बड़ा माफिया था, बदमाश पहले नंबर का, पीछे पुलिस पड़ी, एक हमारे मंदिर में घुस गया, मंदिर में घुस गया, वो अपना पैंट वेंट उतार के, धोती लाल पड़ी थी वो पहन के, धोती और दूसरा कपड़ा ढक के ऐसे बैठ गया जैसे दूसरे भक्त बैठे थे। अब आए अंदर पुलिस वाले ढूंढे तो ये तो सब भक्त बैठे हैं। पुलिस वाले का ही कोई आया नहीं यहां, नियत नियत चलो चले गए। इसने कहा झूठ मूठ का लाल कपड़ा पहना है तो पुलिस से बच गया, अगर सच बच का लाल कपड़ा पहन के हरे कृष्णा जपूं तो यमराज से बच जाऊंगा, भगवान के धाम चला जाऊंगा ना, तो भक्त बन गया। ऐसे अचानक गया, वो अपनी कहानी उसने खुद बताई, वो अपनी कहानी बता रहा था कि मैं मंदिर में सिर्फ जाके थोड़ी देर के लिए यो कपड़ा जो पहन लिया लाल, तो पुलिस मुझे पहचान नहीं पाई। मैंने कहा इतना झूठ मूठ का साधु बनने से भी पुलिस से बच गया, तो सचपच का भक्त बन जाऊंगा तो यमराज भी मेरे को नहीं पकड़ेगा। तो थोड़ा भी कोई अच्छा कल्याण का कार्य किया होगा, जैसे अजामिल ने नारायण के नाम का उच्चारण कर लिया, थोड़ा सा स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, थोड़ा भी भगवान के नाम का कभी जप किया होगा, बड़े से बड़े भय से, बड़े से बड़े डेंजर से बचा लेगा। तो कल्याण कृत का उस डाकू ने क्या किया, फिर डाकू ने एक संत को कहा महाराज आज मेरे को सत्संग का पता लग गया, सब मेरे साथी पुलिस ने पकड़ लिए, दो शब्द सुने थे मैं बच गया, अब मैं आपके शरण में आया हूं, लेकिन मेरे को चोरी करने की मना मत करना, ये तो धंधा मेरा चालू रहेगा, ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन आप मेरे गुरु बन जाइए। तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारी को ठीक है, मैं दो बातें कहता हूं, एक तो झूठ मत बोलना, और कहीं मंदिर में आरती हो तो आरती को छोड़ के पीठ दे के मत जाना। हां गुरुजी ये तो कर लूंगा लेकिन चोरी करूंगा। अब वो राजा के घर में चोरी करने जा रहा है, राजमहल में, तो बाहर खड़े हुए पुलिसमैन ने पूछा राजा के कौन हो, इसने बोला चोर। भाई झूठ तो बोलना नहीं है, गुरु ने कहा था। तो बोला चोर। अब देखो एक आदमी कमांडर का कपड़ा किसका पहना है, पुलिस सुपरिटेंडेंट का। आपका कपड़ा तो नहीं लेके था बाल जीवन, पुलिस वाला टोपी वोपी पहन के जा रहा था। वो कपड़ा पुलिस कमिश्नर का पहला है, कमांडर का जो जो आर्मी का उसका, और अंदर जा रहा है तो उन्होंने पूछा कौन है। बोला चोर। अब झूठ तो बोल नहीं सकता, सब गुरु को वचन दे के आया। तो उन्होंने कहा कमांडर ऐसे चोर बोल रहा है। बोला सर 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 जाओ। जाने दिया अंदर। दूसरे बोला कौन। बोला चोर। फिर जाने दिया और रानी का सारा सामान उठा के भागा और राजा का घोड़ा जो उठाया उसके ऊपर चढ़ा। तो सबने कहा ये राजा का घोड़ा कैसे ले जा रहा है, देखो ये कमांडर है। अरे कौन हो, चोर। उन्होंने बोला इधर राजा ने कहा होगा कोई इमरजेंसी होगी तब रात को मंगाया है, और घोड़ा भी राजा का ले जा रहा है। भागा घोड़ा लेके, सामान से भाव उठी रानी देखे सब, और उसका सामान चला गया, सब आर्नामेंट चले गए, पैसा चला गया। अरे कौन चोर आया, अरे कौन आया था। बोला आया था रात, वो बोलता था मैं कमांडर आया था। अरे कमांडर से पूछा। बोला मैं तो घर सोया हुआ था। बोला घोड़ा कौन ले गया। अरे घोड़ा चोर ले गया, सामान चोर ले गया। अब सब उसको पीछे ढूंढने लगे जाके देखा कि घोड़ा बाहर बंधा हुआ है। मंदिर में आरती हो रही थी, अब वो खड़ा है आरती में। गुरु ने कहा है आरती खत्म नहीं होगी तब तक जाएगा नहीं, तब तक पीछे पुलिस आ गई, घोड़े को पहचान लिया, इसको पकड़ लिया। अरे इसका तो नाम सबको पता था, ये तो नाम ना का चोर है। राजा ने पूछा तुमने चोरी की। बोला हाँ। बोला तुम्हारे को तुमने किसी ने तुम्हें पकड़ा नहीं। बोला मैंने कहा मैं चोर हूं, इन्होंने नहीं पकड़ा, मैं क्या करूं। मैंने सबको कहा मैं चोर हूं तो देखे पकड़ते ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैं अंदर चला गया। बोला इसने कहा था चोर। बोला हाँ। बोला तुमने ऐसे क्यों बोला। मेरे गुरु जी ने कहा था झूठ मत बोलना, और फिर यहां से तुमने देखा पुलिस आ रही है, घोड़ा बांध बंधा हुआ है, तुम भागे क्यों नहीं मंदिर से। बोला गुरु जी ने कहा था आरती हो तो नहीं भागना। राजा को पता लगा, राजा ने कहा इतना बड़ा चोर है अब सच बोल रहा है, अब ऐसे करो इसको क्रिमिनल मिनिस्टर बना दो, क्योंकि सब चोरों को तो जानता है ना, और चोरी के सब इसको टेक्निक आते हैं, तो ये हमारे देश में सब चोरों को पकड़ के लाएगा, हमारा देश बहुत चोरों से बच जाएगा। उसको मिनिस्टर बना दिया। अब एक शब्द सत्संग का सुना, एक, और उससे वो मिनिस्टर बन गया मुफ्त में इस दुनिया में। आप देखा तो ये कहते कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन जिसने एक बार ऐसा पुण्य कार्य कथा सुनने का कर दिया हो, भगवान का नाम जपा हो, तो उसकी दुर्गति कैसे होगी। दुर्गति का मतलब है डिग्रेडेड डेस्टिनेशन, डिग्रेडेड डेस्टिनेशन मतलब नर्क में जाएगा, कुत्ता सुअर बिल्ला बनेगा नहीं बनेगा, राक्षस बनेगा नहीं बनेगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी। ये भगवान ने कहकर आगे के श्लोक में क्या कहते हैं बोलिए आप हमारे साथ। अब भगवान पहला एग्जाम्पल देते हैं, जो 8-10 साल आया कथा किया, कीर्तन किया, भक्त बना, साधना किया, लेकिन फिर 30-40 साल दुनिया में जाके फंस गया, फिर जाके दुकान मकान घर उसमें फंस गया, भगवान का नाम ही छूट गया, उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। ये पहले श्लोक में इसका भगवान उत्तर दे रहे, तो आप पाठ कीजिए। प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा सात्वती समाह सुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ऐसा जिसने थोड़ी देर के लिए योग किया था, कुछ साल किया था, उसको प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, उसको तो स्वर्ग आदि लोक में जाना पड़े, भेज दूंगा। भाई छोड़ा क्यों, भक्ति क्यों छोड़ा, मंदिर क्यों छोड़ा, भक्तों का संग क्यों छोड़ा, बोला एंजॉयमेंट के लिए। तो बोला एंजॉयमेंट उसको मैं इतनी देता हूं स्वर्ग में, उषित्वा शाश्वती समाह, बहुत समय तक उसको कहता हूं स्वर्ग का तुम दुख, जहां पुण्य आत्मा रहते हैं वहां जाके रहूं, वहां जब उसका भोग पूरा हो जाता है, एंजॉयमेंट में वो पूरी हो गई, उसके बाद रिजल्ट क्या मिला? सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। वो इसका धरती के ऊपर जन्म होता है, किसके घर में? सुचिनाम, सुचिनाम कहते हैं, सुचि कहते हैं, और श्रीमताम, श्री कहते हैं धन को, श्रीमताम का मतलब बहुत धनी व्यक्ति के घर में, रॉयल फैमिली में, जिसके घर में पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, ऐसे किसी बहुत बड़े राजकुल में जन्म होता है। लेकिन पैसे वाला सिर्फ बड़ा ऐसा नहीं है, ऐसे चोरों के पास पैसा पड़ा है, डाकुओं के पास बड़ा पैसा है, वैश्या के पास पैसा पड़ा है, हाँ प्रॉस्टिट्यूट के पास भी पैसा बहुत पड़ा है, वो जो डेक्वाइट है, जो माफिया है, उसके पास भी पैसा पड़ा है। इसलिए भगवान श्रीमतान के आगे एक शब्द लगा दिया, सिर्फ श्रीमतान कहता तो कोई भी बड़ा धनी हो सकता है, लेकिन आगे सुचिनाम, सुचिनाम का क्या अर्थ है? जिसका जीवन पवित्र हो, जिसका धन पवित्र हो, चोरी का नहीं, बेईमानी का नहीं, पवित्र, जिसके घर में लक्ष्मी आई हो। कौन सी लक्ष्मी? बोले जो नारायण के साथ आई लक्ष्मी है, वो पवित्र धन होता है। जब धर्म के नाम पे लक्ष्मी आती है तो अकेली नहीं आती है, नारायण के साथ आती है। जब लक्ष्मी नारायण साथ में आते हैं किसी के घर में, तो वो धन पवित्र होता है और वो लक्ष्मी रहती है, कई पीढ़ियों तक रहती है। और जब लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, नारायण का भजन नहीं करते हैं, सिर्फ लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तब लक्ष्मी किसके ऊपर चढ़ के आती है? उल्लू के ऊपर, हाँ, आउल के ऊपर। आउल को क्या कहते हैं फ्रेंच में? क्या कहेंगे सा? क्या? ईबू। हाँ, ईबू के ऊपर चढ़ के आती है। वो ईबू के ऊपर जब चढ़ के आती है ना, तो एक तो चंचल है, सदा रहेगी नहीं, भाग जाएगी, और जब थोड़े दिन रहेगी ना, सो उस आदमी को इब्बू का पठा बना देगी, उल्लू का पठा। वो आदमी न बाप की सुनेगा, न माँ की सुनेगा, न धर्म की सुनेगा, न कर्म की सुनेगा, वो आधी रात तक चोरी करता रहेगा, तो इब्बू का पठा, उल्लू का पठा बन जाता। तो कौन से धनी के घर में भगवान का भक्त पैदा होता है? सुचिनाम, जिसका धन पवित्र है, जिसका जीवन पवित्र है। ऐसे बहुत से, जैसे कहा जाए तो अर्जुन जैसे महात्मा, वैसे अर्जुन भगवान का पार्षद है, लेकिन राजा, राज घर में जन्म हुआ, राजा के घर में, ऐसे किसी महात्मा के घर में, किसी राजा के घर में, बहुत बड़े कुल में जन्म होता है। अब दूसरे कौन से वाले? जिन्होंने 90% तो भक्ति की, 50-30-40 साल तो भक्त बना, आखिरी 1-2 साल में कोई ऐसी बीमारी परेशानी आ गई कि वापस घर लौट के आ गया बुद्धू और प्राण निकल गए, उसका क्या होगा? तब भगवान कहते हैं अथवा योगी नाम एवा कुले भवंती धीमताम एतद्धी दुर्लभत्रम लोके जनम यदि दृशम। अब भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति बस यहां मरा और वहां योगी नाम एक कुले भवंती, उसका जन्म किसी बड़े महात्मा के घर में होगा, किसी बड़े गुरुजी के घर में होगा। कैसा गुरु? धीम योगी। कैसा? धीमताम, बुद्धिमताम, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, जिसका मत बुद्धिमताम शब्द है, बुद्धि धीमताम, धी कहते हैं बुद्धि को, और मत कहते हैं जिसने भगवान को पकड़ के रखा है। आपको बुद्धि शब्द का अर्थ आता है क्या? आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? इंटेलिजिया। ओके, अंग्रेजी में एक ही शब्द है। संस्कृत में अगर आपको पास्ट की बातें याद हैं तो उसको कहते हैं स्मृति। अगर प्रेजेंट कोई चीज आपसे पूछी जाए और अभी आपको उसका तत्काल अच्छा उत्तर दो, उसको कहते हैं बुद्धिमान है। और अगर फ्यूचर में आपने कहा कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ऐसी बुद्धि आपकी, तो उसको कहते हैं मति। स्मृति, बुद्धि, मति। पास्ट की बुद्धि का नाम है स्मृति, प्रेजेंट को बुद्धि और फ्यूचर को मति। और भगवान को पाने वाली बुद्धि को कहते हैं प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा का भाषा दूसरे अध्याय में, प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब इंटेलिजेंट, कौन सा, संसार वाला नहीं, भगवान को पाने वाला, बुद्धि योग जिसको भगवान कृपा करके दे। अंग्रेजी में एक ही शब्द है इंटेलिजेंट, वो भी इंटेलिजा, इंटेलिजा, सो जाओ लेजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। अब देखो भगवान इतना होशियारी से शब्द बोले हैं, सिर्फ योगी नाम का होता तो बहुत से योगी होते हैं। हाँ, योगी तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा योगी, बोला धीमतान, जिसकी मत, जिसकी बुद्धि ने भगवान को पकड़ रखा है, ऐसे योगी के घर में जन्म। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि योगी तो बेचारा सन्यासी होता है, उसने शादी नहीं करके उसे घर में जन्म कैसे लेगा। अगर ये कोई प्रश्न पूछे कि योगी तो सन्यासी साधु यति होता है तो उसे घर में कैसे जन्म लेगा, तो उसका उत्तर क्या है, व्हाट इज द आंसर, गुरु के कुल में जन्म लेगा। यहां कुले भवंती शब्द है, कुले भवंती, जैसे गुरु के पास पढ़ने जाता है तो गुरु कुल हो गया। तो हम ये श्लोक आज सत्संग के लिए इसलिए लिया है, इस्कान शिला प्रभुपाद का कुल है, कुल का मतलब फैमिली है। और आप जो भाग्यशाली कैसे भी कृष्ण भावना से जुड़े हो, इसका मतलब आपने अपने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छा भक्ति किया है और थोड़ा रह गया था, इसलिए आपको प्रभुपाद के इस कुल इस्कान में प्रवेश मिला है। असल में ये श्लोक हमने लिया सिर्फ इसलिए था कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे प्रभुपाद जैसे गुरु के कुल में जन्म लेना दुर्लभत्रम, ये बहुत दुर्लभ है, इजी नहीं है। भाग्य से लोक के इस लोक में ई दृश्यम, ऐसा जन्म बहुत मुश्किल मिलता है। इसका अर्थ है आपके अगर हाथ में माला है और हरे कृष्णा जपते हो तो पहले कम से कम आपने सब तीर्थ किए हैं, सब व्रत किए हैं, सब यज्ञ किए हैं, सब दान किया है, बस केवल भगवत नाम जपना रह गया था, इसलिए जन्म लिया है। और इसलिए भगवान के भक्तों के संग में आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये आप दृढ़ विश्वास कर लो, टेक इट गारंटेड, ये आपका आखिरी जन्म है। ऐसे महान प्रभुपाद के कुल में प्रवेश मिला है, ईदृशम लाइक दिस। प्रभुपाद जी इतने हम्बल हैं, इतने हम्बल है, इस श्लोक में लिखा है कि हमारा जन्म भी ऐसे ही एक भगवान के भक्त परिवार में हुआ, जहां बचपन से हमको राधा कृष्ण की पूजा मिली। हमारे गुरुदेव का जन्म भी ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर के घर में हुआ, जो जगन्नाथ भगवान का दर्शन बचपन में उनकी माला गले की मिल गई। तो ऐसे जन्म बहुत दुर्लभ होते हैं। तो आपको जो ये कृष्ण भावना अमृत संघ का प्रसाद मिला है, एसोसिएशन मिला है, ये आपके पूर्व जन्म के बहुत से किए हुए योग का रिजल्ट है, परिणाम है। इसलिए सावधानी से आगे क्या, अब मेरे ख्याल में आपको लगी है भूख, आप आगे सुन नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये श्लोक पूरे सुनाऊंगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। ये बीच में हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं मालूम है क्यों? जो सोए हुए वो जाग जाएं। हाँ, आपको पहले हमने एक कथा बताई थी, याद है किसी को? हाँ, कौन सी, कौन सी वाली कथा है, आपको याद नहीं है? एक बार एक कथा करने वाला पंडित था, सुबह कथा, शाम कथा, राम कथा, कृष्ण कथा। जब शरीर छूट गया तो वैकुंठ में जाने नहीं दे अंदर, वो वैकुंठ के दरवाजे वाले बोले नहीं जा सकते अंदर, बैठ जाओ। अरे मैं पंडित जी हूं, कथा करता था। बोले चुप। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया, बाल बिखरे हुए थे और फटा हुआ पैंट पहना हुआ था, दरवाजा खोला और वैकुंठ के अंदर चला गया। पंडित जी ने कहा ये तो गलत है, इसको क्यों अंदर जाने दिया, हमको नहीं जाने देते हो, हम कथा करते थे। बोला सुनो तो सही, कौन था ये? पंडित जी ने पूछा। बोला ये बस का ड्राइवर था। बोला बस के ड्राइवर को वैकुंठ में जाने देते हो और कथा करने वाले पंडित को नहीं जाने देते, ये कौन सा इंसाफ है? व्हाट इज द, ये कौन सा जस्टिस है? न्याय कहां है? ओ वैकुंठ के दरबान कहते हैं आगे पढ़ा हुआ लिखा क्या है, पढ़ो तो सही। आगे लिखा है कि ये ड्राइवर इतना रफ ड्राइविंग करता था कर्व के रोड पे, सारे लोग हरे राम हरे राम ऐसे बोलते थे और महाराज आप कथा करते थे तो आधे सोते थे, इसलिए आपके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर रफ ड्राइवर आपको हरे कृष्णा जपने के लिए भय के कारण आपको जागता रखे तो वो उसके लिए वैकुंठ खुल जाएगा, और कथा में आपके दो तीन सो गए तो आपका दरवाजा बंद। हरे कृष्णा, आई बात समझ में? तो बीच बीच में हरे कृष्णा हम इसलिए करते हैं हमारा दरवाजा बंद ना हो जाए। हरे कृष्णा। अब आगे का श्लोक, तत्र तम, बोलिए, बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। तत्र तम मतलब जब ऐसे गुरु के आश्रम में या ऐसे किसी महात्मा के घर में उसका जन्म होगा, किसी आचार्य के घर में जन्म होगा, बुद्धि संयोगम, तो संयोग से उसकी बुद्धि एकदम भगवान की भक्ति में लग जाएगी। लभते पौर्व देहिकम, पूर्व जन्म में जो भक्ति की थी उसको याद आ जाएगी, एक बार सुनेगा तो भागता हुआ आएगा। यतते च ततो भूय, भूय का मतलब अगेन, यततो अब बाबी नाउ इज केयरफुल, यतते अब केयरफुल हो जाएगा, याद आएगा, अरे पहले मैंने आधा काम छोड़ा है तब मेरे को ये मौका मिला है, इतने बड़े महात्मा के घर में रोज सुबह शाम हरि कथा कीर्तन होता है, तो अब यतते ततो भूय संसिद्ध करुनंदना, संसिद्धो संसिद्धो अब सम्यक रूप से सिद्धि, नाउ ही इज ऑन द पाथ ऑफ परफेक्शन। और करुनंदन हे अर्जुन, ऐसा परफेक्शन के रास्ते पे चल पड़ेगा एकदम, और ये हमारे लिए है, अब हमको ये मौका मिला है तो हमारे को अब मौका गंवाना नहीं चाहिए और सावधान होना चाहिए। अब आगे भगवान कहते पूर्व अभ्यास ते नैव हिर्यते अवश्योपि, पूर्व अभ्यास न, पहले जो उसने अभ्यास किया था ना, तो इसलिए उसको सब याद होता है। जैसे हम कब कहते हैं ना, कभी कभी कोई एक बार भक्त मंदिर में आ गया, पांच छह महीने रह गया, फिर कहीं चला भी गया, छह महीने के दो साल के बाद वापस भी आ गया ना, तो कम से कम उसको तिलक लगाना तो पहले से आता है, धोती तो पहनने आती है ना, ये पुराना अभ्यास तो याद रहेगा ना उसको, ये तो नए तरह के सिखाना नहीं पड़ेगा ना, तो जो कुछ थोड़ा बहुत उसने सीखा है वो तो उसको काम आ ही जाएगा ना, तो पूर्व अभ्यास किया हुआ जो होता है उसको याद आ जाता है, और उसके कारण क्या होता है ये ध्यान देना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं, भगवान श्री कृष्ण का ये रहस्य की बात बताने जा रहा हूं। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते, शब्द ब्रह्म कहते हैं वेद को, ऐसा भक्त क्योंकि उसको मालूम है पहले स्वाहा स्वाहा यज्ञ ये देवी देवताओं की पूजा कर ली है मैंने, इसलिए वो वेदों के अंदर कर्म कांड की पूजाओं को नमस्कार करके छोड़ देता है। अब कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? जो पहले बहुत बड़ा साधना किया हुआ है, अब समझ रहे हैं, हिरेते ही अपि अवसो, अवश्य का मतलब है, अवश्य का मतलब है, वश का मतलब है इट इज इन माय हैंड्स, अवश का मतलब है आई कैन नॉट डू इट इज नॉट माय हैंड्स ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ माय ने अवश्य अवश्य वश मींस कंट्रोल अवश मींस इट्स विदाउट हिज ओन कंट्रोल ऑटोमेटिकली हिरियते ही इसकी बुद्धि चली जाएगी कहां भगवान के नाम में। कोई कहेगा चलो आज ये मंदिर है इसके अंदर दर्शन करने चलो, बोला भगवान को प्रणाम, ये यहां पूजा करनी है यज्ञ प्रणाम, क्या करोगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले इससे क्या होगा, बोले जड़ में पानी देंगे पूरा पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाएगा, एक भगवान की भक्ति करने से सब देवी देवता अपने आप खुश हो जाएंगे, हम काहे कितनों को जाके सबको राजी करने का प्रयास करें। ये श्लोक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका माना का समझना मुश्किल है। कभी कभी लोग कहते हैं भक्त काहे के लिए पूजा पाठ नहीं करते, बोले पूजा पाठ क्यों करेंगे, जब भगवान का नाम जप रहे हैं पूजाएं तो पहले अपने आप हो गई, अब नई पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान से एक शब्द का मैं अंग्रेजी में इसलिए पढ़ लेता हूं कि आपको प्रभुपाद के शब्दों में कृष्ण का शब्दों का ध्यान में रखना चाहिए। बाय वर्च्यू ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ, पूर्व जन्म की उसकी बुद्धि उसको याद आ जाएगी, ही ऑटोमेटिकली अवश्य अवश्य मीन्स ऑटोमेटिकली विदाउट एफर्ट बिकम अटैच टू दी योगिक प्रिंसिपल ऑफ भक्ति योग चैंटिंग हरे कृष्ण इवन विदाउट सीकिंग देम, देयर इज नो नीड नो प्रयास, सच एन इंक्विजिटिव ट्रांसेंडेंस स्टैंड अवे ऑलवेज अबाउ द रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ स्क्रिप्चर। वेद के कर्मकांड से को देखेगा भी नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उससे ऊपर है। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं रशिया में, हमारे पास भी होंगे, 3-4 साल का बच्चा है और मृदंग बजा रहा है और किसी ने सिखाया नहीं है लेकिन ताल में बजा रहा है। एक बच्चा तो 1.5 साल का मैंने देखा खड़ताल बजा रहा है कीर्तन में ऐसे करके, ये कहां पूर्व जन्म का संस्कार है, नहीं तो कौन उसको सिखाया, इसने किसी ने सिखाया नहीं है। और ऐसे हमको आश्चर्यजनक बहुत से हमने मेरे पास रिकॉर्डेड हो गए, मैंने देखे और पाश्चात्य देश में देखे, वो फिर ऐसे दुनिया के पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और अब ये आखिरी श्लोक पढ़ के कथा को पूरी करेंगे। और ये तो लास्ट आ गया इससे पहले, अब ये भी ध्यान देना, प्रयत्नाद यतमानस्तो योगी संग सिद्ध कल्पशः। प्रयत्नाद का मतलब प्रयत्न करना, प्रयत्न का मतलब करना का मतलब क्या है, एंडेवर, प्रयत्न का मतलब है कोशिश करते रहना, काम में लगे रहना। यतमानस्तु, पीछे भगवान ने दो शब्द बोला, कृष्ण की भाषा को समझना बुद्धिमान के बल अलावा और नहीं मूर्ख समझ सकता है। प्रयत्नमान का मतलब है प्रयास करना और यतन का मतलब है नीचे गिरने से बचना, आगे एक कदम बढ़ाना और पीछे फिसल न जाए। तो दो चीज दो शब्द इसलिए बोल दिया कि यू एंडेवर टू एडवांस बट बी केयरफुल नॉट टू फॉल अगेन, ये डबल एक्शन है, आगे जाओ लेकिन पीछे मत हटो, प्रयत्नाद आगे जाओ यतमानस पीछे मत हटो। अब 2 फुट आगे जाते हो और 1 फुट पीछे आ गए तो फिर तो कोई ठीक नहीं है, पीछे बिल्कुल नहीं आना है, जस्ट गो फॉरवर्ड। प्रयत्नाद यतमानस तो योग सिद्धिम क्लबशा, वो अपने साधन से सारे दोषों के ऊपर, किलबिश का मतलब होता है दोषों के ऊपर परफेक्शन, सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतम, और ऐसे अभ्यास करते हुए भगवान के धाम को चला जाएगा। तो अब इस कथा को यहां पूरा करते हैं। आज की कथा से आपने क्या आज की कथा से लिया, आज के भगवद गीता का संदेश आपके यहां पालमो गांव में ये है कि अगर भाग्य से आप आज की कथा में आए हो, इसका मतलब आपका पहले का बहुत अच्छा साधन किया हुआ है, तब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से ध्यान से अच्छा पकड़ के रखो और इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, प्रश्न तो यही है प्रसाद कब मिलेगा। जाओ खाओ आरती करो प्रसाद।